नमस्कार। आज 26 दिसंबर है। आज से ठीक 5 महीने बाद, सिर्फ 5 महीने बाद एक नई सरकार शपथ लेगी और 5 महीने चुटकियों में बीत जाते हैं, जैसे पिछले 4 साल और 7 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। जुमलों में बीत गए, रैलियों में बीत गए, चालाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बीत गए, पता ही नहीं चला। 5 महीने भी वैसे ही बीत जाएंगे। इस वक्त जो माहौल है वो उस तरह का माहौल है जैसे तूफान से पहले की शांति होती है, ये वो माहौल है। और साथ में इसमें उकताहट भी है, बोर्डम भी है, रैलियों से, चालाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, उससे थोड़ी बोर्डम भी हो गई है। ऐसे में लोग जो जिन सवालों पर सोच रहे हैं, जो सामूहिक सोच होती है वोटर की, जिन सवालों पर सोच रहे हैं उसमें एक बड़ा सवाल ये शामिल है कि क्या भारत में सांप्रदायिकता का जो माहौल बना है क्या वो उसे रोका जा सकता है? जो जहर फैल रहा है सांप्रदायिकता का, फिरका परस्ती का, चाहे वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर हो, चाहे वो इस नाम पर हो, नैरेटिव पूरा ये बनाया जा रहा है कि 82% हिंदू है इस देश में, वो खतरे में है, क्या उसे रोका जा सकता है? इस वक्त ये माहौल चल रहा है। अभी हाल ही में नोएडा पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि नमाज पढ़ने के लिए जो लोग अपने दफ्तर से बाहर पार्क में आएंगे वो उनकी कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उस पर बहुत से रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया फेसबुक पर भी लिखी है हमारे एक जान पहचान के एफबी फ्रेंड ने। उनका कहना है कि सड़क पर, ये प्रियंका इनका नाम है, सड़क या पार्क में नमाज नहीं होनी चाहिए, शाखा भी नहीं लगनी चाहिए, रामलीला भी नहीं होनी चाहिए, भंडारा भी नहीं होना चाहिए, नेताओं के भाषण भी नहीं होने चाहिए सड़क या पार्क में, गुरु नानक जयंती का प्रसाद भी नहीं बंटना चाहिए, जुलूस भी नहीं निकलना चाहिए, मुहर्रम का भी जुलूस नहीं निकलना चाहिए, कांवड़ियों का जुलूस भी नहीं निकलना चाहिए। जो धर्म कर्म के काम होते हैं वो धर्म की जगह जो होती है, स्थान होते हैं, जगह होती हैं, वहीं पर ही होने चाहिए या निजी घरों में होने चाहिए, निजी बिल्डिंग्स में, इमारतों में होने चाहिए। लेकिन एक पर फूल बरसाना, जैसे कांवड़ियों के साथ हुआ था, पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे कांवड़ियों पर, जिनके लिए पूरा राजमार्ग बंद कर दिया जाता है, और दूसरे पर प्रतिबंध लगाना नमाज पर, ये ठीक नहीं है। सांप्रदायिक माहौल अगर बाकी सबसे नहीं बिगड़ता तो नमाज पढ़ने से भी नहीं बिगड़ता। अब सारा जो नैरेटिव है वो इसी तरफ मोड़ा जा रहा है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इस तरफ मोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे शांति होती तूफान से पहले की, जनता के दिलो दिमाग में एक अंडर करंट है, वो इन तमाम सवालों पर गौर कर रही है। अभी हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने एक स्टेटमेंट दी थी और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें लिखा है कि हमने उसके बारे में बोला क्यों नहीं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि सांप्रदायिकता का, फिरका परस्ती का ये जहर फैल चुका है और दोबारा इस जिन्न को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत एक पुलिस अफसर की मौत के, ये बुलंदशहर का जिक्र कर रहे हैं। फिक्र होती है अपनी औलाद को लेकर। हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी क्योंकि हमारा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कोई मतलब नहीं होता। फिक्र होती है मुझे अपने बच्चों के बारे में क्योंकि कल को उन्हें किसी एक भीड़ ने घेर लिया और पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने कि इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। और नसीर साहब आप अकेले नहीं हैं, हमें भी गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूँ कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहाँ से। बिल्कुल सही बात कही, आपका भी उतना ही घर है जितना किसी और का घर है। बड़ी हैरानी की बात है कि 82% हिंदू जहाँ रहते हों उन्हें मुसलमानों से खतरा है, उन्हें माइनॉरिटीज से खतरा है। एक निगाह डालते हैं ज़रा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ कि मुस्लिम MPs कितने हैं हमारे यहाँ। सन 2009 का जो चुनाव हुआ था उसमें कुल मिलाकर 30 मुस्लिम MPs थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 11, बाकी 13 और मुस्लिम पार्टियों के 4 और इंडिपेंडेंट 1 थे। किस पार्टी ने कितने कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए? कांग्रेस ने 31 मुसलमान प्रत्याशी खड़े किए, बीजेपी ने 4, मुस्लिम पार्टियों ने 31, अन्य ने, बाकी ने 373 प्रत्याशी खड़े किए, टिकट दिया उनको, और इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय थे वो 393 थे। उसके बाद हम आते हैं सन 2014 के चुनाव में। 22 एमपी सिर्फ आए हैं लोकसभा में मुसलमान एमपी। ये सन 62 से लेकर अब तक का सबसे सबसे कम तादाद है, सबसे कम संख्या है ये। इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, कांग्रेस के 3 हैं, अदर्स के अन्य के 16 हैं, मुस्लिम पार्टियों के 3 हैं। ये स्क्रोल से हमने सोर्स किया इसको। और किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है, कितनी टिकटें दी हैं? कांग्रेस ने 27 मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट दिया था 2014 में, भारतीय जनता पार्टी ने 7, अदर्स एंड इंडिपेंडेंट ने 840 टिकटें दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उनका रिप्रेजेंटेशन ही कम करोगे, टिकट नहीं दोगे, यूपी चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये एक तरह से डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश होती है। तो नसरुद्दीन शाह को गुस्सा आना जायज़ है, वो अकेले नहीं हैं, हमें भी उनके साथ गुस्सा आता है कि हिंदुस्तान क्या है और क्या बनाया जा रहा है, ज़रा सोचिए। ये मैं कल का अखबार देख रहा था 25 दिसंबर का, इसमें प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का फोटो है और ऊपर लिखा हुआ है 4 इयर्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, अभूतपूर्व विकास, 4 साल के पिछले 4 साल में अभूतपूर्व विकास, 4 इयर्स ऑफ बिल्डिंग कनेक्टिविटी और इन द नॉर्थ ईस्ट वर्क, ये झूठ देखिए, अब विज्ञापन में झूठ है, वर्क पेंडिंग सिंस 16 ईयर्स से जो काम रुका हुआ था 16 साल से वो 4 साल में पूरा हो गया है। हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं, 16 साल से काम नहीं रुका हुआ था और जो 4 साल में पूरा हुआ वो क्या था, ये बात हो रही है ब्रह्मपुत्र पर जो एक नया पुल जिसका उद्घाटन प्रधान सेवक ने कल किया था कैमरास को हाथ हिलाते हुए करते हुए देखकर, तो जो उद्घाटन हुआ उसका उस पर ये विज्ञापन आया। उसकी हकीकत यह है कि ब्रह्मपुत्र का ये पुल सन 1977 में मोरारजी देसाई के ज़माने में इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, इसकी रूपरेखा बनी थी, इसके बारे में सोचा गया था। उसके बाद आप सन 77 से लेकर आप सीधा सन 98 तक आ जाइए, कितने साल हो गए, ठीक है ना। तब HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी, बुनियाद रखी और मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा सन 1997 में, माफ करें 1997 में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल सन 2002 में, 97 से 2002 कोई काम नहीं हुआ, 2002 में इस पर काम शुरू हुआ और 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे नेशनल स्टेटस दिया, इस प्रोजेक्ट को, ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो नदी के ऊपर जो पुल बना है, रेलवे का भी और सड़क भी है जिसमें टैंक तक जा सकते हैं, हमारी जो फौजें हैं वहाँ नॉर्थ ईस्ट में उन तक सप्लाईज भी पहुँचाई जा सकती हैं। तो ये 2007 में इसको नेशनल स्टेटस दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया और फिर काम में तेज़ी आई। उसके बाद असली काम जो शुरू हुआ उस पुल पर, ये सन 2011 में शुरू हुआ। पहले 15,000 करोड़ रुपए का आउटले था इसका, तय किए गए थे 15,000 करोड़ और अब 5,800 करोड़ लग गए हैं क्योंकि देरी बहुत हो गई। और ये कहना गलत होगा कि पिछले 4 साल में जो 16 साल का काम नामुकम्मल था उसको पूरा किया गया, वो झूठ है, काम चलता रहा था। इस पुल में 3-लेन रोड है टॉप डेक पे और डबल लेन है लोअर डेक पे और एक रेल और रोड ऑप्शन भी देता है ये नागरिक को। अरुणाचल प्रदेश से 20 किलोमीटर पहले तक ये चलता जाता है ये पुल, ठीक है, और इसको 25 तारीख को कल इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वर्क पेंडिंग सिंस 16 ईयर्स कंप्लीटेड इन 4 ईयर्स, 16 ईयर्स तक पेंडिंग नहीं था, असली काम जो हुआ वो 2014 तक हुआ था, बाकी जो बचा खुचा काम था ये पिछले 4 साल में पूरा हुआ है और इसका श्रेय हमेशा की तरह प्रधान सेवक ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह दिल्ली में रानी झांसी फ्लाईओवर, अब रानी झांसी फ्लाईओवर की कहानी हम आपको सुनाएं, वो ये है कि 1.8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनना था, ठीक है, और 1998 में इसकी शुरुआत हुई और 2006 में ये मुकम्मल होना था, लेकिन ये मुकम्मल हुआ 2018 में। इससे साबित हो जाएगा कि सरकारें कांग्रेस की ही थी उस वक्त, ठीक है, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। 177 करोड़ की लागत पहले आनी थी, अब आई है 825 करोड़ की लागत। ये सब हमारे पैसे हैं जो जा रहे हैं, ठीक है। ये रानी झांसी फ्लाईओवर है, ये शुरू होता है दिल्ली में 30,000 की जो कोर्ट्स हैं, अदालत हैं, और सेंट स्टीवंस हॉस्पिटल है वहाँ से शुरू होता है, फिर पुल बंगश से होते हुए फिल्मिस्तान होते हुए नीचे उतरता है रानी झांसी मार्ग पर। अहमदाबाद मेट्रो अभी तक नहीं शुरू हुई है, जबकि सोचा यह गया था कि 2017 में इसका पहले चरण का काम मुकम्मल होगा और फिर ये शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि 2019 तक शुरू हो सकती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2020 तक भी शुरू होने के चांसेस नहीं है फेज़ वन के। मुंबई का जो वर्ली सी लिंक है, वर्ली बांद्रा सी लिंक है, 9 साल लगे उसको बनने में, उसकी कीमत भी बढ़ी। अब सवाल ये है कि जो श्रेय लेने वाले हैं, जो सरकारें होती हैं, चाहे वो ये सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो, कोई भी हो, ऐसा क्यों होता है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में डिले क्यों होते हैं? डिले या देरी अपने आप में एक उद्योग है। मुझे याद है, मैं अपने घर के बाहर पड़ोसी के साथ बैठा हुआ था, लॉन में चाय पी रहे थे, तो मेरा घर जहाँ पर है उसके बगल में ही एक सड़क है, उसका नाम है जमुना रोड, बड़ी पुरानी सड़क है, तो वो एक तरफा सड़क है, वन वे है। एक दिन मैंने देखा कि रातों रात उस पर आधी सड़क के बीच में ट्रैफिक वाली, जैसे वो पीली पीले पेंट की एक पूरी जो लाइन होती है वो खींच दी गई है, जैसे कि दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा। तो मैं अपने पड़ोसी से बात कर रहा था, मैंने कहा ये दोनों तरफ ट्रैफिक खोल रहे हैं सड़क पर, क्या ये तो वन वे है? कहते नहीं, किसी छोटे मोटे ठेकेदार को काम देना होगा, पैसे कमाने होंगे किसी जेई ने, जूनियर इंजीनियर ने, इसलिए ठेका दे दिया। वन वे पे पेंट लगा दिया, बीच में दो हिस्से उसके कर दिए। तो जितना भी प्रोजेक्ट हमारा डिले होता है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती है, जितनी कीमत बढ़ती है उतना ही पैसा जो ठेकेदार होते हैं उनके पास जाता है, उनके जरिए औरों तक जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए बीमारी है, मुसीबत है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। असली काम सरकारों के ये होते हैं, क्योंकि सरकारें हमारी सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारी मालिक नहीं है, हाकिम नहीं है, प्रधान सेवक हमारे सेवक हैं, ये बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैं बार बार इस बात का उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरा टेलीफोन वाला सर्विस प्रोवाइडर मुझे सही सर्विस दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के मालिक के मैं पांव छूं, उसके गले में फूलों के हार डालूं। मैं पैसे दे रहा हूं, तुम मुझे सर्विस दो। मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूं, मुझे सर्विस दो। तो ये जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये क्या कहें, शब्द कोई और आ नहीं रहा, नौटंकी में ज़्यादा यकीन रखते हैं, राजा बनने में, राजा महसूस करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, बजाय इसके कि सर्विस प्रोवाइडर माने खुद को। और इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप इन्हें सर्विस प्रोवाइडर नहीं मानते हैं, आप इन्हें राजा मानते हैं, खुद को प्रजा मानते हैं। नहीं, आप नागरिक हैं, प्रजा नहीं है। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।